नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ओशो के नए मनुष्य जगत में। ओशो एक नए मनुष्य, एक नई मानवता को जन्म देना चाहते हैं। ओशो कहते हैं, सारी दुनिया में नए मनुष्य की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ नया मनुष्य ही इस दुनिया को विध्वंस से बचा सकता है। पुराने मनुष्य ने सिर्फ विध्वंसक विधियां, युद्ध और हिंसा बनाई। नया मनुष्य बुद्ध होगा, करुणा, प्रेम और शांति से भरा।
Love.
आज के प्रवचन में ओशो हमें हिंसा की वृत्ति और अहिंसा के विषय में बताएंगे कि पशु के लिए हिंसा स्वभाव है, पशु तल पर अहिंसा की कोई संभावना नहीं है, लेकिन मनुष्य के लिए हिंसा स्वभाव नहीं, वह मनुष्य का स्वभाव नहीं है, वरन अतीत का संस्कार है, वह अर्जित है इसलिए छोड़ा जा सकता है, वह एक बीमारी है और यह बीमारी आदमी की चेतना के विकास में बाधा है। मनुष्य एक संक्रमण है, एक बीज का सेतु है, जहां से पशु से परमात्मा में संक्रमित और रूपांतरित हो सकता है। ओशो कहते हैं, ध्यान रहे, युद्ध समस्या नहीं है, समस्या व्यक्ति के भीतर की आंतरिक आक्रामकता है, लोग स्वयं के साथ सहज नहीं है, इसलिए युद्ध है, वरना ये लोग पागल हो जाएंगे। हर सदी को बड़े युद्ध की जरूरत होती है, वरना मानवता विक्षिप्त हो जाएगी। ओशो कहते हैं, जड़ मूल से रूपांतरण की जरूरत है, सामान्य बदलाव काम नहीं आएंगे, लेकिन तब हो सकता है कि तुम ना समझ पाओ। मैं यहाँ हूँ, मैं ध्यान के बारे में बोले जा रहा हूँ, नहीं तुम किसी तरह का नाता नहीं देखते, कैसे ध्यान का युद्ध से कोई संबंध है, मैं संबंध देखता हूँ, तुम कोई नाता नहीं देखते। लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ गरीबी है और गंदगी है और आप ध्यान सिखाए जा रहे हैं, रोको यह, गरीबी के लिए कुछ करो। लेकिन सीधे सीधे गरीबी के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता, सिर्फ ध्यान की ऊर्जा को बहाना है ताकि लोग इस क्षण का आनंद ले सकें, तब यहाँ गरीबी नहीं होगी। ओशो कहते हैं, मेरी समझ यह है कि यदि मानवता का 1% ध्यानी हो जाए, युद्ध विदा हो जाएंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ध्यान की इतनी ऊर्जा का बनना जरूरी, इसका मतलब है कि 100 में से 1 ध्यानी हो जाए, चीजें पूरी अलग ही तरह की हो जाएंगी। आज की प्रवचन श्रृंखला ज्यों की त्यों धरिदीनी चदरिया पंच महाव्रत के 6 वॉल्यूम से ली गई है, जिसमें प्रश्नोत्तर, अहिंसा से भाग संकलित किया गया है।
जीवन चारों तरफ हिंसा है, ये हिंसा रोग है मनुष्य, ये हिंसा अब अनिवार्य नहीं है पशु के लिए रही हो और सांस में स्मरण करें। जैसे ही विकास का नया चरण उठाया जाता है, नई जिम्मेदारियां और नए दायित्वों में भी चरण उठ जाता है। एवरी स्टेप ऑफ एवोल्यूशन इज ए स्टेप इन ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो बड़े दायित्व में ले ही जाएगा। जिस दिन से पशु छोड़कर मनुष्य मनुष्य हुआ है, उसी दिन से अहिंसा उसका दायित्व का हिस्सा हो गई, क्योंकि मनुष्य खिल ही नहीं सकता हिंसा के बीच, वो प्रेम के बीच उसका पूरा फूल खिल सकता है। इसलिए मैंने कहा कि अहिंसा स्वास्थ्य है, हिंसा रोग। हिंसा से बड़ा शायद और कोई रोग नहीं, और हमारे हजार हजार रोग शायद हिंसा से ही पैदा होते। अगर पागलखाने में जाएं, तो 100 पागलों में से 99 पागल सिर्फ इसलिए पागल हुए मिलेंगे कि साधारण रहकर हिंसा करनी उन्हें असंभव हो गई। हिंसा करने के लिए उन्हें पागल होने की स्वतंत्रता जरूरी थी, इसलिए पागल हो जाना पड़ा। अगर हम अपने मानसिक चिकित्सालयों में और मानसिक चिकित्सकों से पूछे तो पता चलेगा कि वो भीतर इकट्ठी हिंसा जब जोर से एक्सप्लोसिव हो जाती है, जब उसका विस्फोट होता है, तो मन के सारे तंत्र बिखर जाते हैं और आदमी विकसित और दुर्बल हो जाता है। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो मानसिक रूप से बीमार न हो। मानसिक रूप से जिन्हें हम नॉर्मल कहते हैं, स्वस्थ कहते हैं, उसका केवल मतलब इतना ही है, उसका मतलब स्वस्थ नहीं है, उसका इतना ही मतलब है कि वो नॉर्मल पागलपन, उसका फुल मतलब इतना है, दूसरे पागल बाकी लोग भी है, वो एवरेज पागलपन। जिसको हम पागल कहते हैं वो एबनॉर्मल है, वो जरा एवरेज से आगे चला गया, उसने जरा छलांग लगा दी। शायद हम 90 डिग्री पर उबलते हुए पागल है, जिसे हम पागल कहते हैं वो 100 डिग्री पर पाप बन गया। हमारे उसके बीच गुण का कोई अंतर नहीं, मात्रा का भी है। पागल खानों और पागल खानों के बाहर जो लोग हैं, उनके बीच कदमों का ही फासला है। बड़ी दीवारें हम कितनी ही उठाएं पागल खानों के चारों तरफ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे और पागलों के बीच बहुत ही थोड़े से कदमों का फासला है, और वो फासला भी ऐसा नहीं है जिसकी तरफ हमारी पीठ हो, वो फासला ऐसा है जिसकी तरफ हमारा मुंह है, और वो फासला भी ऐसा नहीं है कि हम खड़े हो, वो भी फासला ऐसा है कि हम वृत्ति पर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और फासले को कम कर रहे हैं। जो मनुष्य के मन को देखने में समर्थ है, वे कहते हैं कि शायद पूरी मनुष्यता धीरे धीरे पागल खाना होती जा रही। जिन्हें हम शरीर के रोग कहते हैं, वे भी 90% से ज्यादा मन के रोगों से निर्मित होते हैं और शरीर तक फैलते हैं। और मन का बुनियादी रोग हिंसा, हिंसा का क्या मतलब है वो मैं ख्याल दे दूं तो ये रोग ख्याल में आ जाए। हिंसा का मतलब है ऐसा चित्त जो लड़ने को आतो, ऐसा चित्त जिसका रस लड़ने में, ऐसा चित्त जो बिना लड़े बेचैन हो जाए, ऐसा चित्त जो बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना किसी को दुख पहुंचाए, सुख अनुभव न कर सके। स्वभावतः जो चित्त दूसरे को दुख पहुंचाने को आतुर है, या जिस चित्त का दूसरे को दुख पहुंचाना ही एकमात्र सुख बन गया है, ऐसा चित्त सुखी नहीं हो सकता। ऐसा चित्त भीतर गहरे में दुखी होगा। एक बहुत गहरा नियम है कि हम दूसरे को वही देते हैं जो हमारे पास होगा, अन्यथा हम देखी नहीं सकते। जब मैं दूसरे को दुख देने को आतुर होता हूँ, तो इसका इतना ही अर्थ है कि दुख मेरे भीतर भरा है और उसे मैं किसी पर उलीस देना चाहता हूँ। जैसे बादल जब पानी से भर जाते हैं तो पानी को छोड़ देते हैं जमीन पर, ऐसे ही जब हम दुख के भीतर भर जाते हैं तो हम दूसरों पर दुख फेंकना शुरू कर देते हैं। जो कांटे हम दूसरों को चुभाना चाहते हैं उन्हें पहले अपनी आत्मा में जन्माना होता है, उन कांटों को हम लाएंगे कहां से? और जो पीड़ाएं हम दूसरों को देना चाहते हैं उन्हें जन्म देने की प्रसव पीड़ा बहुत पहले स्वयं ही झेल लेनी पड़ती है। और जो अंधकार हम दूसरों के घरों तक पहुंचाना चाहते हैं वो अपने दिए को बुझाए बिना पहुंचाना असंभव है। अगर मेरा दिया जलता हो और मैं आपके घर अंधकार पहुंचाने जाऊं तो उल्टा हो जाएगा, मेरे साथ आपके घर में रोशनी पहुंचेगी अंधकार नहीं पहुंच सकता। जो व्यक्ति हिंसा में उत्सुक है उसने अपने साथ भी हिंसा कर ली है, वो कर चुका हिंसा। इसलिए एक सूत्र और आपसे कहना चाहूंगा और वो ये कि हिंसा आत्महिंसा का विकास। भीतर जब हम अपने साथ हिंसा कर रहे होते हैं तब वही हिंसा ओवरफ्लो होकर बाढ़ की तरह फैलकर किनारे तोड़कर स्वयं के दूसरों तक पहुंच जाती। इसलिए हिंसा कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता, भीतर अस्वस्थ होगा ही। उसके भीतर हारमोनी सामंजस्य संतुलन संगीत नहीं हो सकता, उसके भीतर विसंगी द्वंद कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष होगा ही, वो अनिवार्यता है। जो दूसरे के साथ हिंसा करना चाहता है उसे अपने साथ बहुत पहले हिंसा कर ही लेनी पड़ेगी, वो पूर्व तैयारी है। इसलिए हिंसा मेरे लिए अंतर्द्वंद, दूसरे पर फैलकर दूसरे को दुख बनती है, अपने भीतर जब उसका बीज अंकुरित होता और फैलता तो स्वयं के लिए द्वंद और अंतर संघर्ष और अंतर पीड़ा बनती है। हिंसा अंतर संघर्ष अंतर असामंजस्य अंतर विग्रह अंतर कलह की स्थिति है। हिंसा दूसरे से बाद में लड़ती है, पहले स्वयं से ही लड़ती और बढ़ती। प्रत्येक हिंसक व्यक्ति अपने से लड़ रहा है और जो अपने से लड़ रहा है वो स्वस्थ नहीं हो सकता। स्वस्थ का अर्थ ही है हारमोनी, स्वस्थ का अर्थ है जो अपने भीतर एक समस्वरता को एक रसता को एक लयबद्धता को एक रिदिम को हो गया। महावीर या बुद्ध के चेहरों पर जो संगीत की छाप, वीणा लिए हुए बैठे संगीतज्ञों के चेहरे पर भी जो संगीत की छाप नहीं, वो महावीर के वीणा रहित हाथों में है। वो संगीत किसी वीणा से ज्यादा होने वाला संगीत नहीं, वो भीतर की आत्मा से फैला हुआ समस्वरता का बाहर तक बिखरना है। बुद्ध के चलने में वो जो लयबद्धता, वो जो बुद्ध के उठने और बैठने में, वो जो बुद्ध की आंखों में एक समस्वरता है, वो समस्वरता किन्हीं कड़ियों के बीच बंधे हुए गीत की नहीं, किन्हीं वाद्यों पर पैदा किए गए स्वरों की नहीं, आत्मा के भीतर से सब द्वंद के विसर्जन से उत्पन्न हुई। अहिंसा एक अंतर संगीत, और जब भीतर प्राण संगीत से भर जाते तो जीवन स्वास्थ्य से भर जाता, और जब भीतर प्राण विसंगीत से भर जाते तो जीवन दुग्णता डिस्ट से भर जाता। ये अंग्रेजी का शब्द डिस्ट बहुत महत्वपूर्ण, वो डिस्ट से बना, जब भीतर विश्राम खो जाता है, ईज खो जाती है, जब भीतर सब संतुलन जगमगा जाते हैं और सब लयें टूट जाती हैं और काव्य की सब कड़ियां बिखर जाती हैं और सिद्धांत की सब तार टूट जाते हैं तो जो स्थिति है वो डिजीज। और जब भीतर कोई चित्त रुग्ण हो जाता है तो शरीर बहुत दिन तक स्वस्थ नहीं रह सकता है, शरीर छाया की तरह प्राणों का अनुगमन करता है। इसलिए मैंने कहा कि हिंसा एक रोग है, एक डिजीज है, और अहिंसा रोग मुक्ति है, अहिंसा स्वास्थ्य है। जैसे मैंने कहा अंग्रेजी का शब्द दिस इज महत्वपूर्ण है, वैसा हिंदी का शब्द स्वास्थ्य महत्वपूर्ण। पता नहीं, स्वास्थ्य का मतलब हेल्थ नहीं होता, जैसे डिजीज का मतलब सिर्फ बीमारी नहीं होता। स्वास्थ्य का मतलब होता है स्वयं में जो स्थित हो गया, स्वयं में जो ठहर गया, स्वयं में जो खड़ा हो गया, स्वयं में जो लीन और डूब गया, स्वयं हो गया है जो, जो अपने स्वयंता को उपलब्ध हो गया है, जहाँ अब कोई पर्ता नहीं, कोई दूसरा नहीं कि जिससे संघर्ष भी हो सके, कोई भिन्न स्वर नहीं, सब स्वर स्वयं बन गए, ऐसी स्थिति का नाम स्वास्थ्य। अहिंसा इस अर्थ में स्वास्थ्य हिंसा दो। और पूछा है कि बायोकेमिकली जीव रसायन की दृष्टि से मैं क्या कहना चाहूंगा। जीव रसायन की दृष्टि से भी, बायोकेमी की दृष्टि से भी हिंसा रुग्णता। जैसे ही चित्त हिंसा से भरता, शरीर विषाक्त द्रव्यों से भर जाता, जैसे ही चित्त हिंसा से भरता वैसे ही सारे शरीर में विषयुक्त द्रव्य दौड़ने शुरू हो जाते। शरीर में ग्रंथियां हैं जो पॉइजन को इकट्ठा करती है, शरीर में ग्रंथियां हैं जो जहरों को अर्जित करके इकट्ठा रखती है समय पर जरूरत पड़े उसकी सुरक्षा में। जब आप क्रोध से भरते हैं तो आपके पास वही खून नहीं रह जाता जो क्रोध के पहले, आपका खून पॉइजन होता। आपके खून में वे ग्रंथियां उन जहरों को छोड़ देती हैं जो आपको लड़ने और मरने का पागलपन दे सके। इसलिए क्रोध की हालत में आप इतना बड़ा पत्थर उठा सकते हैं जो आपने अक्रोध की हालत में कभी नहीं उठाया, नहीं उठा सकते। क्रोध की स्थिति में आप अपने से ताकतवर आदमी को उठा के फेंक सकते हैं जो कि आप शांत स्थिति में कभी सोच भी नहीं सकते। आपके शरीर में केमिकल परिवर्तन हो गए, आपका शरीर वही नहीं, शरीर ने इकट्ठे किए हुए विष छोड़ दिए खून में, अब आप होश में नहीं है। क्रोध टेम्पररी मैडनेस है, क्रोध अस्थाई पागलपन है, और इसलिए आदमी क्रोध में ऐसे काम कर लेता जो उसने स्वयं कभी भी न किए होते। इसलिए क्रोध में आदमियों ने हत्याएं की है और पीछे जीवन भर रोए और पछताए और जिंदगी भर कहा है कि ये मैंने कैसे कर लिया, ये मेरे बावजूद हो गया, ये मैंने नहीं किया, ये कैसे हो गया। क्रोध में हम सबने वह किया है जो हमने करना नहीं चाहा था, फिर वो किसने किया, निश्चित किया हमने, लेकिन वैसे ही किया है जैसे शराब पी के कोई कर लेता है। लेकिन ये शराब हमारे खून में भीतरी स्रोतों से आती है इसलिए पता नहीं चलता। शराब हम ऊपर की बोतलों से ले जाते हैं तो पता चल जाता, शराब भीतरी स्रोतों से आती तो पता नहीं चलता। मनुष्य के शरीर ने लाखों करोड़ों वर्षों की यात्रा में विष ग्रंथियां इकट्ठी की हैं जो इमरजेंसी के लिए जरूरी नहीं है, जब वो जानवर था पशु था तब बहुत जरूरी नहीं। एक शेर हमला कर दे किसी पर, उसके पास दौड़ने की अमानवीय क्षमता तत्काल पैदा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो दौड़ने का अब अभ्यास करेगा और तब दौड़ना सीखेगा और तब भाग सकेगा, ये इमरजेंसी है। तत्काल उसके शरीर में उतना पागलपन आ जाना चाहिए कि वह होश छोड़ के भाग सके, क्योंकि अगर होश रखा तो शायद बचना मुश्किल होगा। इसलिए शरीर ने लाखों वर्षों की यात्रा में विष ग्रंथियां विकसित की है जो कि इमरजेंसी की हालत में खून में तत्काल ऑटोमेटिकली छूट जाती और आप विक्षिप्त होकर दौड़ सकते। भय में आदमी कांप रहा है, ये कंपन रासायनिक परिवर्तन है। काम की वृत्ति से पीड़ित हुए आदमी के भीतर अनेक तरह के रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। अगर जानवरों को काम की सेक्स की उन्माद स्थिति में देखें तो एक अनुभव होगा जो कुछ मनुष्यों में अभी भी शेष है। उनके शरीर से विभिन्न प्रकार की दुर्गंधें या गंधें निकलनी शुरू हो जाती। असल में पशु पहचानते ही तब है कि उनकी मादा तत्पर है संभोग के लिए, जब एक विशेष गंध उसके शरीर से निकलनी शुरू हो जाती। संभोग के क्षण में मनुष्य के शरीर से भी, स्त्रियों के शरीर से भी विशेष गंधें निकलनी शुरू हो जाती। उनका शरीर एक रासायनिक परिवर्तन से गुजर रहा है। मनुष्य के चित्त में जो होता है तत्काल उसके शरीर की केमिस्ट्री उसका पीछा करती है। जब आप भोजन लेते हैं तब आपका शरीर उन द्रव्यों को छोड़ देता है जो भोजन के पचाने के लिए जरूरी है, और जब आप हिंसा से भरते हैं तो शरीर उन द्रव्यों को छोड़ देता है जो हिंसा करने में सहयोगी हो सकते हैं। इसलिए हिंसा केवल मानसिक तथ्य नहीं है, बायोकेमिकल तथ्य भी है, लेकिन रासायनिक तत्व भी है। जब मैं ये कहता हूँ तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि केवल रासायनिक तत्व है। वैसे कहने वाले रसायनविद भी आज मौजूद है जो कहते हैं कि अब आदमी को अहिंसा की शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं, हम कुछ ग्रंथियों को काट के अलग कर देते हैं फिर आदमी हिंसा करने में असमर्थ हो जाए। वे ठीक कहते हैं थोड़ी दूर तक, लेकिन वे जो सुझाव दे रहे हैं वो हिंसा करने से भी खतरनाक सुझाव। ये संभव है कि हम आदमी की कुछ ग्रंथियों को काट दें। हमने देखा है बैल को भी और एक सांड को भी, बैल और सांड में सिर्फ एक ग्रंथि के कट जाने के फर्क के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। लेकिन कहां बैल की दीनता और कहां सांड का गौरव। बैल की आत्मा विकसित नहीं हुई, सिर्फ शरीर दीन हो गया है। आदमी के शरीर से भी आज नहीं कल वैज्ञानिक उन ग्रंथियों को अलग करने का सुझाव देगा, दे रहा है, दिया जा चुका है। और कोई आश्चर्य नहीं कि चीन और रूस की तानाशाही सरकारें उस सुझाव पर बहुत जल्दी अमल भी शुरू कर देती। आदमी के शरीर से भी कुछ ग्रंथियां काटी जा सकती हैं, तब वो हिंसा प्रकट नहीं कर सकेगा लेकिन अहिंसक नहीं हो जाएगा। ये दोनों अलग बातें हैं। तब वो शरीर से सिर्फ दीन हो जाएगा, वो वैसा ही होगा जैसे बूढ़ा आदमी काम वासना से तो पीड़ित होता लेकिन काम की दुनिया में प्रवेश करने में असमर्थ हो जाता। नहीं, वो आदमी का विकास नहीं होगा। और वैसा आदमी जिस दिन हम पैदा कर लेंगे वैसा आदमी विद्रोह नहीं करेगा, बगावत नहीं करेगा, गुलामी उसकी आत्मा बन जाएगी, वो नामजबलियत हो जाएगा। सरकारें जरूर चाहेंगी कि आदमी को रासायनिक ढंग से गैर हिंसक बनाया जा सके, बनाया जा सकता है, लेकिन उससे आदमी पशु से भी नीचे गिर जाएगा, आदमी से ऊपर नहीं जा सकता। इसलिए ये भी मैं आपसे कहना चाहूंगा इस संदर्भ में कि आदमी को बहुत जल्द सारी दुनिया में इसके खिलाफ भी आवाज उठानी पड़ेगी कि जीव रासायनिक जो सुझाव दे रहे हैं वे मनुष्य की आत्मा के बहुत विपरीत और खतरनाक हैं। उन सुझावों से ज्यादा बड़ी गुलामी न तो कभी आई थी न कभी आ सकती। एक बड़ी केमिकल रेवोल्यूशन, एक रासायनिक क्रांति निकट, उसके प्राथमिक चरण पर काम होना शुरू हो गया। मैं कहूंगा कि निश्चित ही हिंसा के लिए शरीर में कुछ तत्व जरूरी हैं, लेकिन उन तत्वों के अलग होने से आदमी की आत्मा अहिंसक नहीं होती, सिर्फ इम्पोटेंटली वायलेंट रह जाती है, सिर्फ नपुंसक रूप से हिंसक रह जाती है। हिंसा तो भीतर घुमड़ेगी, आत्मा में डिसीज होगी, आत्मा संगीत रहित होगी, लेकिन उस संगीत रहितता को दूसरे तक पहुंचाने के लिए शरीर असमर्थ हो जाए, तो दूसरे तक पहुंचने की असमर्थता हो जाए। हम ये बल्ब तोड़ दे सकते हैं लेकिन बल्ब के तोड़ने से उसमें बहने वाली बिजली नहीं टूट जाती, लेकिन दिखाई तो नहीं बंद हो जाए। बल्ब से बिजली प्रकट होती है, बल्ब बिजली नहीं। ग्रंथियों से शरीर की हिंसा प्रकट होती है, ग्रंथियां हिंसा नहीं। और दूसरा भी ख्याल ले लेना जरूरी है कि जब व्यक्ति के चित्त से हिंसा विदा हो जाती है तो ये ग्रंथियां जिन्होंने हिंसा को सहयोग दिया था, ये ग्रंथियां जिनके विष और मादक तत्व फैलकर मनुष्य को विक्षिप्त करते रहे थे, इनके संग्रहित स्रोत मनुष्य के जीवन में नई तरह की रासायनिक क्रांति लानी शुरू कर देते। महावीर के संबंध में कहा जाता है कि उनके पसीने से दुर्गंध नहीं आती, ये बात कहानी मालूम होगी। लेकिन बहुत अवैज्ञानिक बात नहीं है, ये संभव है। महावीर के शरीर से सुगंध आती रही हो ना आती रही हो, लेकिन आज नहीं कल मनुष्य के शरीर से सुगंध आ सकती, क्योंकि जहां से भी दुर्गंध आ सकती है वहां से सुगंध आ सकती है। सब सुगंधें दुर्गंधों का रूपांतरण है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। खाद डाल देते हैं बगीचे में और फूल सुगंधों से भर जाते हैं। और आज हजारों तरह की जो सुगंधें बाजार में बिकती हैं, अगर उनके बनाने के कारखाने में जाएं तो पता चलेगा कि सुगंध दुर्गंध का रूपांतरण। अगर शरीर दुर्गंध फेंक सकता है विशेष स्थितियों में, तो कोई कारण नहीं मालूम होता कि विशेष स्थितियों में सुगंध क्यों न फेंक सके। मैं आपको कहता हूँ कि महावीर की कथा कथा नहीं है, शरीर ने सुगंध बहुत बार फेंकी है, आज भी फेंक सकता है। अगर चित्त पूरा रूपांतरित हो जाए और शरीर में इकट्ठे ये जो विषाक्त संग्रह है, अगर इनका उपयोग बंद हो जाए और ये बढ़ते चले जाए और इनका उपयोग बंद हो जाए, तो एक बड़ी मजे की घटना घटती है। क्वांटिटेटिव चेंज टर्न्स इनटू क्वालिटेटिव चेंज। जैसे ही गुण परिमाण का अंतर पड़ता है, वैसे ही गुण का अंतर शुरू हो जाता है। 99 डिग्री तक और 100 डिग्री में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मात्रा का फर्क। लेकिन 99 डिग्री तक पानी पानी होता है, 100 डिग्री पर भाप बन जाता है। फर्क क्वांटिटी का है, लेकिन अंत का क्वालिटी का हो जाता है। सब क्वालिटेटिव चेंज, सब गुणात्मक परिवर्तन मूलतः मात्रा के परिवर्तन। अगर शरीर में ये जो विषाक्त द्रव्य अब तक दुर्गंध फैलाने का काम करते रहे, एक मात्रा से ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाए तो रूपांतरित हो जाते हैं और शरीर से सुगंध फैलनी शुरू हो जाए। अहिंसा की अपनी सुगंध है, हिंसा की अपनी दुर्गंध, प्रेम की अपनी सुगंध है, काम की अपनी दुर्गंध है, सत्य की अपनी सुगंध है, असत्य की अपनी दुर्गंध। इसलिए मैं बायोकेमिकली आदमी को अहिंसक बनाने के पक्ष में नहीं हूँ। आध्यात्मिक अर्थों में मनुष्य अहिंसक बने तो उसकी बायोलॉजी भी और उसकी बॉडी केमिस्ट्री भी रूपांतरित होती है, और जिनसे सदा दुर्गंध मिली थी उनसे सुगंध की सौरव की फैलनी शुरू हो जाती। एक और बात पूछी है, पूछा है कि साइकिक एनाटॉमी मन संरचना की दृष्टि से हिंसा को रोक कहने का अर्थ हो सकता है। मानसिक संरचना की दृष्टि से हिंसा मन का खंड खंडों में टूट जाना है, डिस इंटीग्रेशन। अहिंसा इंटीग्रेशन है, मन का अखंड हो जाना। हमारे पास भी मन है, लेकिन शायद एक वचन में बोलना ठीक नहीं, कहना चाहिए हमारे पास मन है नहीं। हम पॉलीसाइकिक है, यूनिसाइकिक नहीं। हमारे पास एक मन नहीं है, हमारे पास बहु मन। एक एक आदमी के पास बहुतेरे मन, साधारणतः हम सोचते हैं एक ही मन है हमारे पास, गलत सोचते हैं। अभी तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जंग कहता है, और दूसरे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य पॉलीसाइकिक बहुचित्तवान। लेकिन ये जान के हैरानी होगी कि महावीर ने बहुचित्तता का पहली बार प्रयोग किया था 2500 साल पहले। महावीर ने कहा था मनुष्य बहुचित्तवान पॉलीसाइकिक, एक चित्त नहीं है आदमी के भीतर, बहुचित्त है। इसीलिए तो सांस आप तय करते हैं कि कल क्रोध नहीं करूंगा, और कल क्रोध करते हैं आप सोचते हैं मैं कैसा हूँ, कल मैंने तय किया, और आज फिर क्रोध करते हैं, फिर पछताते हैं, फिर संध्या कर क्रोध करते हैं। आदमी रोज नई नई भूलें नहीं करता, वही वही भूलें बार बार करता है, जिनके लिए हजार बार पछता चुका है, पश्चाताप कर चुका है। कारण क्या है? असल में जो चित्त क्रोध करता है और जो चित्त निर्णय करता है, वो दो चित्त है, उन्हें एक दूसरे की खबर भी नहीं मिलती, उनके बीच कम्युनिकेशन भी नहीं। जब आप तय करते हैं कि अब मैं क्रोध नहीं करूंगा, तो ये चित्त का एक खंड है जो तय कर रहा है, समझ ले आ तय कर रहा है। और कल सुबह जब उठ के पत्नी पर टूट पड़ते हैं तो बा क्रोध कर रहा है, बा के हटते ही आ लौट आता है और पश्चाताप करता है कि तय किया था कि क्रोध नहीं करेंगे, फिर क्रोध क्यों किया। फिर सांस को कोई पैर पर जरा जूता लग जाता है, किसी का बा सामने आ जाता है, क्रोध फिर प्रकट करता है, आप पीछे हट जाता है। जैसे कि साइकिल के चक्के पर इसको इसको ऊपर नीचे घूमते रहते हैं, ऐसा ही प्रतिपल आपके भीतर चित्तों का परिवर्तन होता रहता है, बहुत चित्त है आपके घर में। गुरुजीएफ कहा करता था कि मैंने एक ऐसे घर के संबंध में सुना है जिसका मालिक कहीं दूर यात्रा पर गया है। बहुत बड़ा भवन था, बहुत नौकर थे, वर्षों बीत गए, मालिक की खबर नहीं मिली, मालिक लौटा भी नहीं, संदेश भी नहीं आया। धीरे धीरे नौकर ये भूल गए कि कोई मालिक था भी, भूलना भी चाहते हैं नौकर की कोई मालिक है, तो जल्दी भूल गए। फिर कभी कोई यात्री उस महल के बाहर से निकलता तो कोई नौकर सामने मिल जाता, तो उससे पूछता कौन है इस भवन का मालिक, तो कहता मैं। लेकिन आसपास के लोग बड़ी मुश्किल में पड़े, क्योंकि कभी कोई द्वार पर मिलता, कभी कोई द्वार पर, बहुत नौकर थे, और हर एक कहता कि मैं। जब भी कोई पूछता कौन है मालिक इस भवन का, तो आदमी कहता मैं, जो मिल जाता वही कहता मैं। सारे लोग बड़े चिंतित हुए कि कितने मालिक हैं इस भवन के। तो सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने पता लगाया, और सारे घर के नौकर इकट्ठे किए, तो वहां कई मालिक थे। सब बड़ी कठिनाई खड़ी हो गई, वे सब नौकर लड़ने लगे, और उन्होंने कहा मालिक हैं हम। और जब बात बहुत बड़ी, तब किसी एक बूढ़े नौकर ने कहा कि क्षमा करें, हम व्यर्थ विवाद में पड़े हैं, मालिक घर के बाहर गया, हम सब नौकर, मालिक लौटा नहीं, बहुत दिन हो गए, हम भूल गए, और कोई जरूरत भी नहीं रही याद रखने की, शायद वो कभी लौटेगा भी नहीं। फिर मालिक लौट आया तो घर के 25 मालिक तत्काल विदा हो गए, तत्काल नौकर हो गए। गुरुजी कहा करता था ये आदमी के चित्त की कहानी, जब तक भीतर की आत्मा जागती नहीं, तब तक चित्त का एक एक टुकड़ा, एक एक नौकर कहता है मैं हूं मालिक। जब क्रोध करने वाला टुकड़ा सामने होता है तो वो कहता है मैं हूं मालिक, और वो मालिक बन जाता है कुछ देर के लिए, और पूरा शरीर उसके पीछे चलता है, शरीर को कुछ पता नहीं, वो मालिक के पीछे चलता है। फिर पश्चाताप करने वाला आ जाता है, वो कहता है मैं हूँ मालिक, और तब शरीर रोता है, वही शरीर जिसने तलवार उठा ली थी, वही आंसू बहाता है, उसको कुछ पता नहीं, वो किसी भी मालिक का अनुमान करता है, जो भी जोर से कहता है आम दमास्क, शरीर तत्काल उसके पीछे खड़ा होता है। वही मन कहता है ब्रह्मचरी, तो शरीर कहता है बड़ी पवित्र बात तैयार। दूसरा खंड कहता है भोग, कहता है बिल्कुल राशि, मैं तो मालिक के पीछे चलता हूँ, होली साइकिक है आदमी, साइकिक संरचना उसकी जो मन की संरचना है वो कई खंडों के, मन बहुत खंड में बटा है, और तब तक बटा रहेगा जब तक अखंड आत्मा बीच में जाग न जाए। हिंसा इन खंडों की आपस की लड़ाई है, इन नौकरों के अपने सबके दावे की मैं मालिक हूँ। अगर आमने सामने पड़ जाते हैं तो मन बड़े द्वंद में पड़ जाता है, मन 24 घंटे लड़ता रहता है कि मालिक कौन। और ये जो मन के लड़ते हुए खंड है, इनकी लड़ाई से जो द्वंद और जो पीड़ा और दुख पैदा होता है, वही चित्त आदमी दूसरे से भी लड़ के निपटता रहता है। ये बहुत मजे की बात है कि अक्सर हम अपनी लड़ाई को बाहर प्रोजेक्ट करते हैं, प्रक्षेप करते हैं। आपके भीतर एक चोर है, आप उस चोर से लड़ रहे हैं, आप उसको दबाए हुए हैं कि चोरी न करने देंगे। अगर आपके पड़ोस में चोरी हो जाए और चोर पकड़ लिया जाए तो आप सबसे ज्यादा उस चोर की पिटाई करेंगे, क्योंकि आप अपने भीतर एक चोर को दबाए हुए हैं जिसकी पिटाई बहुत बार करनी चाहिए लेकिन कर नहीं पाए। अब एक चोर बाहर मिल गया तो आपका चोर प्रोजेक्ट हो जाएगा, आप पिटाई करेंगे। चोर की पिटाई के लिए चोर जरूरी है, कोई साधु चोर की पिटाई नहीं कर सकता क्योंकि प्रोजेक्शन का उपाय नहीं। इसलिए जितने चोर हैं वो चोरों के खिलाफ दिन रात बातचीत करते रहे, जितने बदमाश हैं वो बदमाशों की निंदा करते रहे, जितने कामातुर हैं वो काम की निंदा करते रहे। जो भीतर भरा है हम उसे बाहर प्रोजेक्ट करते हैं। बचपन में कहा है कि जब कोई आदमी बहुत जोर से चिल्लाए कि वो जा रहा है चोर पकड़ो पकड़ो चोरी हो गई बहुत बुरा हो गया, तो पहले उस आदमी को पकड़ ले, क्योंकि आदमी आदमी निकल चोरी करेगा। हम अक्सर अपनी बीमारियों को, अपने चित्त के रोगों को दूसरे से आरोपित कर लेते। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि अगर एक आदमी किसी दूसरे आदमी की निंदा करता हो तो जिसकी निंदा करता है उसके संबंध में बहुत कुछ नहीं बता पाता, अपने संबंध में बहुत कुछ बता देता है। उसकी निंदा खबर देती है कि वो क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, उसके भीतर कोई लड़ाई जारी है जिस लड़ाई को वो किसी पर रोक देता है। अगर भीतर कोई लड़ाई जारी नहीं रही तो बाहर रोकने का उपाय बंद हो जाता है, बाहर कोई उपाय नहीं है रोकने का। मनुष्य का चित्त खंडित है, यही उसकी हिंसा का जन्म है। अब मनुष्य का चित्त अहिंसक होने लगे तो अखंड होगा, एक हो जाए, और जब चित्त एक हो जाता है उसमें भिन्न स्वर नहीं रह जाते तो मनुष्य के जीवन में जो आनंद का नृत्य शुरू होता है, जो आनंद की बांसुरी बजती है, उसी बांसुरी के साथ से लोग परमात्मा तक पहुंचे और किसी रास्ते न पहुंचे न पहुंच सकते।
ओशो टाइम्स के एक संपादकीय में माँ अमृत साधना लिखती हैं, चारों तरफ हिंसा और क्रूरता का जो दावानल जल रहा है उसे देखकर एक दुखद सवाल पूछने का मन होता है, आदमी मनुष्य कब बनेगा, कब अपने जीवाणुओं में बैठी हुई पशुता को छोड़ेगा और विकास की सीढ़ियां पर चढ़ेगा। अजीब समय है, सारे प्रसार माध्यम आदमी की क्रूरता और हिंसा को प्रदर्शित करने में लगे रहते हैं। टेलीविजन पर प्रतिदिन किसी न किसी हत्याकांड में निर्दोष लोगों की लाशों की नुमाइश दिखाई जाती है। मनुष्य जितनी हत्याएं करता है उतनी तो जंगली जानवर भी नहीं करते। किसी भी जंगल में जाएं, वहां सामूहिक रूप से मरे हुए पशु नहीं दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि हिंसा सिर्फ आतंकवादी कर रहा है या डाकू कर रहे हैं, हिंसा हम में से प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है प्रतिपल। हिंसा के तल अलग होंगे, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते जाएंगे, लेकिन हिंसा का भाव बना रहेगा। हिंसा का अर्थ क्या है? दूसरे का हनन करने का भाव। किसी के शरीर को मारना ही हिंसा नहीं होती। किसी के भाव को कुचलना, किसी के विचारों को दबा देना, किसी की ओर कठोरता से देखना, किसी को अपमानित करना, ये सब हिंसा के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। यहाँ तक कि ओशो कहते हैं, स्वयं को न जानना हिंसा है। और हिंसा के मूल स्रोत तक पहुंचना हो तो वह है आत्म अज्ञान। माँ अमृत साधना आगे लिखती हैं, क्योंकि हमारा अंतस अंधकार से भरा है, हम दूसरों को भी नहीं देख सकते, तू और मैं, यह भाव ही हिंसा की जड़ है। अहंकार का सहज तर्क है कि जो भी मैं नहीं है वह मेरा दुश्मन है, उसे खत्म कर दो। ओशो इस भाव को मानव के पार्श्विक अतीत के साथ जोड़ते हैं, जब मनुष्य और पशु में कोई खास फर्क नहीं था। वह अपनी पार्श्विकता से ऊपर उठ रहा था, तब उसे अपनी रक्षा के लिए पशुओं को मारना जरूरी था, लेकिन अब सभ्यता के विकसित होने के बाद क्या हिंसा की कोई जरूरत रह गई है? अब हिंसा मनुष्य की जरूरत नहीं, विवशता बन गई है। मनुष्य के जीवाणुओं में हिंसा प्रविष्ट हो गई है, उसके अवचेतन का हिस्सा बन गई है। क्या इस जैविक हिंसा से मनुष्य मुक्त हो सकता है या उसके लिए कोई आशा नहीं है? इस पर ओशो की अंतर्दृष्टि इतनी अद्भुत है, इतनी मौलिक है कि उसका सभी विचारशील लोगों को अध्ययन करना चाहिए। जो भी सामाजिक संस्थान बाल हिंसा, पारिवारिक हिंसा, जानवरों के प्रति क्रूरता इत्यादि के लिए कार्यरत हैं, उनके लिए ओशो के विचार नई राह दिखाएंगे। ओशो सिर्फ समस्या को ही नहीं दिखाते, उसके समाधान भी देते हैं। हर समस्या को पर्त दर पर्त उघाड़ कर उसका निराकरण भी सामने रखते हैं। हिंसा से मुक्त होने का एक उपाय है शरीर के जीवाणुओं और धातुओं का रासायनिक परिवर्तन। यह परिवर्तन रेशन पर आधारित सक्रिय ध्यान विधियों से होता है। आखिर आदमी दूसरे को मारने में या दुख देने में उत्सुक क्यों होता है? क्योंकि वह भीतर से दुखी है, गहन दुखी है। ओशो हमें उपाय बताते हैं कैसे मन की भूमि में सुख के झरने फूटें, कैसे मनुष्य स्वयं में स्थित हो। कैसे वह अपने में इतना डूब जाए कि दूसरा दूसरा ही न लगे, मानो स्वयं का ही फैलाव हो। हिंसा पशु का स्वभाव है और मनुष्य की विकृति। हिंसा मनुष्य के भीतर भरे हुए विष का रेचन है, उसके मन में खोलते हुए दुर्भावों का निकास है। लेकिन अब इस तरह मूर्छित जीने की जरूरत विदा हो गई। जीवन का सूर्य हमारे द्वार आया हुआ है, द्वार खोलें, उस प्रकाश पावन को मन के अंधतमस में स्थान दें। राजनेताओं के हाथों में परमात्मा भी दुनिया को नहीं बचा सकता। तुम्हें रहस्यदर्शियों की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ रहस्यदर्शी पूरी दुनिया में प्रेम और शांति का, मौन और आनंद का, गीत और नृत्य का माहौल पैदा कर सकते हैं। वे जीवन को इतना समृद्ध कर देंगे कि लोग युद्ध के बारे में सोच भी नहीं सकते। प्रेम प्रेम को पैदा करता है और नफरत नफरत को पैदा करती है। जो कुछ भी तुम देते हो वह उसी रूप में तुम पर लौट आता है। यह सनातन नियम है। इसलिए जो कुछ भी तुम चाहते हो वही दुनिया को दो। तुम कांटे देकर फूल नहीं पा सकते। तो मित्रों, हम सबको ध्यान के फूल खिलाने हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम नई मानवता को जन्म दे सकें। ओशो की देशना, उनका प्यार तो है हमारे साथ, ढेर सारे प्रेम के साथ। हमारा नमस्कार।
मधुमास जगाना होगा, जीवन के उजड़े उपवन में फिर मधुमास जगाना होगा, प्राणों की उत्तप्त धरा पर फिर रसधार बहाना होगा। खरे अमोलक कंचन है हम, पर माटी के मूल बिके जग सागर के सरसज है हम, पर करदम में लिप्त दिखे हैं। खरे अमोलक कंचन है हम, पर माटी के मूल बिके हैं, जग सागर के सरसज है हम, पर करदम में लिप्त दिखे हैं। बांक नहीं जीवन बंसी में, सुर छेड़े हम जैसे चाहे, बहुत गाली राग वरण के अब जीवन के गाना होगा। जीवन के उजड़े उपवन में फिर मधुमास जगाना होगा, प्राणों की उत्तप्त धरा पर फिर रसधार बहाना। जग के छल छंद हो गए, हम अपने ही अहंकार के कारागृह में बंद हो गए। हम अनुपम गोविंद गीत है पर जग के छल छंद हो गए, हम अपने ही अहंकार के कारागृह में बंद हो गए। हमें देह के देवालय में करनी होगी प्राण प्रतिष्ठा, भावों का नैवेद्य चढ़ाकर झूठा दीप मनाना होगा। हमें देह के देवालय में फिर मधुमास जगाना होगा प्राणों की उत्तप्त धरा पर फिर रसधार बहाना होगा अपने ही घर में है पर दुख सपनों में भटक गए हैं हम तो है आकाश खुले पर गम के बादल लटक गए हैं हम अपने ही घर में है पर दुख सपनों में भटक गए हैं है आकाश खुले पर गम के बादल लटक गए अपने घट में राम बसे पर इच्छाओं के दास हुए हम फिर जीवन के वृंदावन में मुरलीधर बन जाना होगा अपने घट में राम बसे पर इच्छाओं के दास हुए हम फिर जीवन के वृंदावन में मुरलीधर बन जाना गाना होगा प्राणों की उत्तप्त धरा पर फिर रसधार बहाना होगा अपने घट में राम बसे पर इच्छा